नमस्कार भारत, तारीख 30 सितंबर दिन रविवार, मैं हूं वात्सल्य राय। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय विदेश मंत्री ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा।
हमारे यहाँ आतंकवाद की चुनौती कहीं दूर देश से नहीं बल्कि सीमा पार अपने पड़ोसी देश से ही आई है।
पाकिस्तान पर सुषमा के वार को कैसे देख रहे हैं विश्लेषक।
रेट्रिक ज्यादा होती है इंडिया की, लेकिन इंडिया की जो प्यूनिटिव एक्शन है वो पाकिस्तान के खिलाफ जरा वीक होते हैं।
इंडोनेशिया में भूकंप और सुनामी से मरने वालों की संख्या 400 के करीब, अधिकारियों को डर बढ़ सकती है मृतक संख्या।
इडेंटिफिकेशन दिलाकुकन जदि दिपरकिराकन जुमला कुर्बान।
और लखनऊ में एक कांस्टेबल की गोली से हुई मौत के बाद सवालों में घिरी यूपी पुलिस।
क्यों मारा, किस वर्दी के नशे में चूर थे वो? चोर उचक्कों को पकड़ना होता है तो हमेशा निशाना चूक जाता है, वो हाथ से निकल जाते हैं।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। इंडोनेशियाई अधिकारियों का कहना है कि शुक्रवार को सुलवेसी द्वीप पर आए भूकंप और सुनामी के कारण मरने वालों की तादाद हजारों में हो सकती है। उन इलाकों से भारी तबाही की खबरें मिल रही हैं जिनसे संपर्क भूकंप की वजह से कट गया था। अभी तक लगभग 400 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। सबसे ज्यादा प्रभावित पालू शहर हुआ है, जहां 6 मीटर से ऊंची लहरें तटों से टकराई हैं, जिनकी चपेट में आने से उत्सव मनाने जुटे सैकड़ों लोग मारे गए हैं और घायल हुए हैं। पालू में हजारों लोग आपात राहत केंद्रों में रह रहे हैं। उत्तर कोरिया का कहना है कि प्रतिबंध जारी रहने की वजह से अमेरिका के प्रति उसका भरोसा कम हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए अपने संबोधन में उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री योंग हो ने कहा कि जब तक भरोसा पैदा नहीं होगा, उत्तर कोरिया के हथियार छोड़ने का रास्ता भी नहीं खुलेगा। उन्होंने कहा, कोरियाई प्रायद्वीप में शांति को लेकर हमारी चिंताओं का समाधान करने के बजाय अमेरिका पहले परमाणु निरस्त्रीकरण करने पर जोर दे रहा है और अपना उद्देश्य हासिल करने के लिए प्रतिबंध लगाकर दबाव बढ़ा रहा है। ये समझना कि प्रतिबंध हमें घुटनों पर ले आएंगे उन लोगों का सनकी सपना है जो हमें पूरी तरह से जानते ही नहीं है। समस्या ये है कि प्रतिबंधों के जारी रहने से हमारा भरोसा कम हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माता कंपनी के चेयरमैन इलॉन मस्क अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। वो अमरीकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ विवाद को समाप्त करने के लिए $2 करोड़ का हर्जाना भी चुकाएंगे। ये मामला अगस्त में किए गए इलॉन मस्क के उस ट्वीट से शुरू हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो कंपनी को दोबारा निजी मिल्कियत में ले जाना चाहते हैं। कमीशन ने इलॉन मस्क पर मुकदमा दर्ज करते हुए निवेशकों को भ्रमित करने का आरोप लगाए थे और उनके निलंबन की मांग की थी। हालांकि मस्क टेस्ला कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने रहेंगे। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयिप अर्दोगान ने जर्मनी के शहर कोलोन में यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक का उद्घाटन किया है। उन्होंने मस्जिद को शांति का प्रतीक बताते हुए जर्मनी की सरकार का शुक्रिया अदा किया। कोलोन में बड़ी तादाद में तुर्क मूल के लोग रहते हैं जिनमें अर्दोगान के समर्थक और विरोधी दोनों हैं। उद्घाटन समारोह में बोलते हुए अर्दोगान ने कहा है कि तुर्की सरकार के विरोधियों को समारोह में खलल नहीं डालने दी गई। उन्होंने कहा, हमारे नागरिक जहां भी हों हम उनकी सुरक्षा करते रहेंगे। हम फेतुल्लाह गुलेन के संगठन फेटे से जुड़े अयोग्य लोगों और पीकेके के समर्थकों को अपने नागरिकों को परेशान नहीं करने देंगे और जर्मनी और तुर्की की दोस्ती में दरार नहीं पड़ने देंगे। ब्राजील में दसियों हजार महिलाएं राष्ट्रपति पद के दक्षिणपंथी उम्मीदवार जाइर बोल्सोनारो के खिलाफ देशभर में चल रहे प्रदर्शनों में शामिल हो गई हैं। अधिकतर चुनाव सर्वेक्षणों में आगे चल रहे बोल्सोनारो अपनी नस्लवादी, समलैंगिक विरोधी और महिला विरोधी टिप्पणियों के कारण लोगों के निशाने पर हैं। बोल्सोनारो का कहना है कि उनके राजनीतिक विरोधी उन्हें जीतने से रोकने के लिए बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। उन पर एक राजनीतिक रैली के दौरान चाकू हमला भी हुआ जिसकी वजह से उन्हें 3 सप्ताह अस्पताल में बिताने पड़े। बोल्सोनारो का कहना है कि अभी वो पूरी तरह फिट नहीं हैं और मतदान से पहले अपना चुनावी अभियान फिर से शुरू नहीं कर पाएंगे। अमेरिका में संघीय जांच एजेंसी FBI ने राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से सुप्रीम कोर्ट के लिए नामित जज ब्रेट कैवेना पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। उन पर आरोप लगाने वाली एक महिला डेबोरा रामिरेज के वकील का कहना है कि FBI ने उनसे संपर्क साधा है और वो अपने बयान दर्ज कराने के लिए तैयार हो गई हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं लाइव। अभी से करीब 11 घंटे पहले भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया। भारतीय विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की भी बात की। कुछ घंटे बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी बोले और अनुमान के मुताबिक उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया। सुनिए न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद अब भी विश्व भर के लिए खतरा बना हुआ है और पाकिस्तान आतंकवाद की हिमायत जारी रखे हुए है।
आज आतंकवाद का राक्षस कहीं धीमी गति से तो कहीं तेज गति से विश्व के हर देश तक जा पहुंचा है। भारत तो कई दशकों से इसका दंश भोग रहा है और हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ आतंकवाद की चुनौती कहीं दूर देश से नहीं बल्कि सीमा पार अपने पड़ोसी देश से ही आई है। और वो देश केवल आतंकवाद फैलाने में ही माहिर नहीं है बल्कि अपने किए हुए को नकारने में भी उसने महारत हासिल कर ली है। 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद आज भी खुला घूम रहा है, लेकिन एक बात संतोष की है कि दुनिया के देशों ने अब पाकिस्तान का सही चेहरा पहचान लिया है।
सुषमा स्वराज ने ये सवाल भी किया कि भारत पाकिस्तान से आतंक के साए में बातचीत कैसे कर सकता है।
जम्मू और कश्मीर पुलिस के 3 जवानों का पहले अपहरण किया और बाद में उन्हें मारकर फेंक दिया, क्या ये हरकतें बातचीत की नीयत को दर्शाती हैं? और क्या ऐसे वातावरण में मुलाकात हो सकती है और क्या मुलाकात होनी चाहिए?
भारतीय विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की जरूरत पर जोर दिया और ये भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र को बहुपक्षवाद की नीति पर ही चलना चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की आवश्यकता है और उससे भी पहले सुरक्षा परिषद के सुधार में आवश्यकता है, और ये सुधार दिखावे के लिए नहीं बल्कि ऐसे सुधार हों जो दिल और दिमाग में बदलाव लाए। आज सुरक्षा परिषद दूसरे विश्व युद्ध के 5 विजेताओं तक ही सीमित है, क्या इसे आज के युग के अनुकूल माना जा सकता है जब भारत समेत विश्व का अधिकांश हिस्सा उपनिवेशवाद की गिरफ्त में था? उस समय की बनाई गई सुरक्षा परिषद क्या आज के विश्व की चुनौतियों को समझ पा रही है? मुकाबला करना तो दूर, जो चुनौतियां हैं वो उसकी समझ से परे हैं। इसलिए मेरी अपील है कि सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जानी चाहिए।
भारतीय विदेश मंत्री के भाषण के कुछ घंटों बाद ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी शनिवार को ही महासभा में संबोधन किया, जिसमें कश्मीर का मुद्दा एक बार फिर उठाया।
जनूबी एशिया में अमन उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक मसला जम्मू और कश्मीर पर अक्वामे मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद और कश्मीरी आवाम को हक की राह दही न दिया जाए। 70 बरस से ये मसला इंसानियत के ज़मीर पर एक बदनुमा दाग है। अब दहशतगर्दी की आड़ में भारत कश्मीर में मुनज़्ज़म कत्ल गारत गरी का सिलसिला जारी न रख सकेगा।
पाकिस्तानी मंत्री ने भारत पर पाकिस्तान में चरमपंथी कार्रवाई करने वालों की हिमायत का आरोप लगाया और मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत को टाल रही है। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुषमा स्वराज ने हिंदी में भाषण दिया और शाह महमूद कुरैशी उर्दू में बोले। भारतीय विदेश मंत्री ने अपने भाषण में कई मुद्दों का जिक्र किया। भारत की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने उनके भाषण की तारीफ भी की है, लेकिन विश्लेषक इस भाषण को किस तरह से देख रहे हैं ये जानने के लिए मैंने अमरीका में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर मुकद्दर खान से बात की।
इंडिया की सारी तकरीर मैंने सुना, उसमें चाइना के बारे में एक लफ्ज नहीं था। 3 हिस्से थे तकरीर में सुषमा स्वराज के। पहला हिस्सा था कि हमने इंडिया को कैसा ग्रेड बना रहे हैं, हमने ये योजना की। तो दूसरा हिस्सा था उनका बिल्कुल पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है, वो बिन लादेन के बारे में वगैरह। और तीसरा जो हिस्सा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी चाह रहे हैं कि मल्टीलैटरलिज्म को किस तरह से रिफॉर्म किया जाए। लेकिन इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस की मुद्दा जो सबसे बड़ा है वो चाइना का रोल है। चाइना ने धीरे धीरे इंडिया को घेरने की तरह से पाकिस्तान में एक सी पोर्ट बना रहा है, श्रीलंका में एक सी पोर्ट अब वो खुद ओन करता है। तो इस तरह से जो चाइना का रोल है ورلڈ اکانومی میں، ورلڈ کی اسٹریٹجک میں، اس پہ انڈیا کچھ نہیں کہا. جو انٹرنیشنل ملکوں کا جو مسائل ہے، امریکہ کی جو فورن پالیسی ہے، امریکہ کی یونی لیٹرلزم جس سے وہ انٹرنیشنل ہر فورم کو وہ کمزور کیے جا رہے ہیں، اور جو ٹیرف لگائے جا رہے ہیں، انڈیا پر بھی ٹیرف لگائے ہیں، انڈیا پر بھی جو H-1B ویزاز ہے اس پہ انہوں نے چیزیں مشکل کر دی، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر صرف یہ پاکستان اور پھر وہ ڈومیسٹک الیکشن والی باتیں کر رہے تھے. تو مجھے لگا کہ ایک موقع ویسٹ کر دیا انڈیا کے فورن منسٹر نے یہ ظاہر کرنے کے لیے دنیا کو کہ انڈیا اب ایک میجر پاور بن گیا ہے، دنیا کی تیسری سب سے بڑی اکانومی ہے، نیوکلیئر پاور ہے، اس کی کافی عزت ہے، اور سب سے اہم امریکہ کی ڈیموکریسی کمزور ہو رہی ہے لیکن انڈیا میں ڈیموکریسی مضبوط ہے، ریلیجیس پلورلزم مضبوط ہے، سول سوسائٹی مضبوط ہے، فریڈم آف پریس مضبوط ہے. اگر ٹیررزم کے بارے میں بات کرنا ہی تھا تو دوسرے مسئلے بھی تھے، سیریا کے بارے میں بات کرتے، عراق میں بات کرتے، بتاتے کہ انڈیا کیا رول پلے کر سکتا ہے گلوبل ٹیررزم کے خلاف. تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کو اپنا ویژن کو ذرا گلوبل کرنا چاہیے اور یہ ریکگنائز کرنا چاہیے کہ انڈیا اب ایک بہت اہم ملک بن گیا ہے ورلڈ سٹیج پہ.
یہ موقع گنوانے کی جو بات ہے یہ پچھلے سالوں میں بھی اٹھی ہے، تو کیا بات ہے بھارت کی سوچ کیوں نہیں بدل پا رہی ہے، آپ کو کیا وجہ لگتا ہے؟
انڈیا یہ جو پری ایمٹیولی ڈیفینسو کھیلتا ہے پاکستان سے، اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو انڈیا کا جو اسٹیچر ہے وہ کمزور اور چھوٹا ہو جاتا ہے، دوسرا وہ پاکستان کو بڑھا دیتا ہے. امیجن کریں آپ، دنیا کا ایک میجر کنٹری اپنی 1/3 تقریر پاکستان کے بارے میں کر رہا ہے، انڈیا کا رول ساؤتھ ایشیا میں کیا ہے، انڈیا نے چھوٹے چھوٹے ملک جو آس پاس ہے ان میں کافی ڈیولپمنٹل پروجیکٹس، مثال کے طور پہ آپ دیکھیں امریکہ میں یا یورپ میں سب ون آف دا بگ مسئلہ افغانستان کا ہے، اور انڈیا نے افغانستان میں کافی بڑے رول ادا کیے ہیں. انڈیا کی گورنمنٹ کو خود پتا نہیں ہے کہ انڈیا کیا کیا کر رہا ہے انٹرنیشنل فورم میں.
بھارت کے بعد پاکستان کے ودیش منتری بھی بولے، کشمیر کا مدعا انہوں نے اٹھایا، ان کے بھاشن کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟
پاکستان کی جو دو ٹریجیکٹریز ہیں، ایک تو ایک وہ اپنی ڈومیسٹک پاپولیشن کو خوش کرنے کے لیے یہ باتیں کھڑے کرتے ہیں کشمیر کے لیے، انٹرنیشنلی کوئی ریزونینس نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کا ریپیٹیشن انٹرنیشنلی اب اتنا خراب ہو گیا ہے، تو ان کی جو دوسری کوشش ہوتی ہے وہ پاکستان کی جو ریپیٹیشن ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش. میری نظر میں یہ ہے کہ یا تو انڈیا پاکستان کے ساتھ اور سختی سے پیش آئے، اینڈ آئی ڈونٹ مین ملٹریلی، پاکستان کے خلاف انڈیا انٹرنیشنل ارینا میں سینکشنز اور اس کے ساتھ تعلقات کاٹتے ہوئے اس کو ایک پرایا اسٹیٹ کی طرح اگر ٹریٹ کرے گا تو اس کا جو یہ جو بیلیجرنس ہے وہ بھی کمزور ہو جائے گا. ریٹرک زیادہ ہوتی ہے انڈیا کی، لیکن انڈیا کی جو پیونیٹیو ایکشنز ہے وہ پاکستان کے خلاف ذرا ویک ہوتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا اپنی زبان کم کرے، لکڑی چھڑی ذرا مضبوط کرے.
یہ تھے پروفیسر مقدر خان، اور اب بات انڈونیشیا کی. انڈونیشیا میں شکروار کو آئے بھوکمپ اور اس کے اثر سے اٹھی سونامی لہروں کی وجہ سے مرنے والوں کی سنکھیا 400 کے قریب پہنچ گئی ہے. ادھیکاری آشنکا جاہر کر رہے ہیں کہ یہ سنکھیا اور بھی بڑھ سکتی ہے. زیادہ بیورا دے رہے ہیں ہمارے ساتھی دل نواز پاشا.
انڈونیشیا کے سلویسو پرانت میں شکروار کو آئے بھوکمپ اور سونامی کی وجہ سے مارے گئے لوگوں کی تعداد قریب 400 ہو گئی ہے. وہیں ادھیکاریوں نے یہ تعداد ہزاروں تک پہنچنے کی آشنکا ظاہر کی ہے. سلویسو دویپ پر بھوکمپ کے جھٹکے آنے کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں دہشت ہے. پربھاوت لوگوں تک راحت پہنچانے کے لیے انڈونیشیا کی سینا کو اتارا گیا ہے. ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ ابھی بھی بہت سے لوگ لاپتہ ہیں جن میں سے کئی ملبے میں دبے ہو سکتے ہیں. سلویسو دویپ کا پرمکھ شہر پالو اور بھوکمپ کے کیندر کے پاس استھت ڈونگالا شہر سب سے زیادہ پربھاوت ہیں. سرکار کی آپات سیوا ایجنسی کے پروکتا ستوپو پورو نگورو کا کہنا ہے کہ پالو اور ڈونگالا میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے. انہوں نے کہا پربھاوت لوگوں کو سرکشت نکالنے اور مارے گئے لوگوں کی پہچان کرنے کا کام ابھی چل رہا ہے. ہمارا انمان ہے کہ پالو اور ڈونگالا دونوں جگہ بھوکمپ اور سونامی کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے. ہمیں رپورٹیں ملی ہیں کہ کئی جگہ سونامی کی لہریں 6 میٹر تک اونچی تھیں اور لوگوں نے اس سے ادھک اونچائی کے پیڑوں پر چڑھ کر اپنی جان بچائی ہے. انڈونیشیا کے اپراشٹرپتی یوسف کالا کا کہنا ہے کہ ابھی بھوکمپ کے کیندر بندو کے پاس استھت شہر ڈونگالا سے ہوئے نقصان کا پورا بیورا نہیں ملا ہے. یہاں مرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہو سکتی ہے. ڈونگالا میں قریب 300,000 لوگ رہتے ہیں. मुख्य शहर पालू में हजारों लोगों को आपात केंद्रों में रहना पड़ रहा है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस के जैन गेफलैंड ने बीबीसी को बताया कि बचावकर्मी प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बचावकर्मी अभी तक पालू शहर तक ही पहुंच पाए हैं। डोंगाला के कई दूरस्थ इलाकों तक पहुंचने में अभी कामयाबी नहीं मिली है। हमें लगता है कि वहां बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होगा। प्रभावित शहरों की सड़कों पर लाशें पड़ी हैं और अस्पताल धराशायी होने की वजह से घायलों का इलाज टेंटों में ही किया जा रहा है। इंडोनेशिया में भूकंप आते रहते हैं। हाल के महीनों में यहाँ कई बड़े भूकंप आए हैं जिनसे भारी तबाही हुई है।
रिपोर्ट सुना रहे थे दिलनवाज पाशा।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात एक पुलिस कांस्टेबल की गोली से हुई एक मौत ने यूपी पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पुलिस अधिकारियों से लेकर सरकार के मुखिया तक सफाई देने में जुटे हैं। गोली चलाने वाले कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मृतक का परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। सुनिए लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
लखनऊ के न्यू हैदराबाद कॉलोनी में विवेक तिवारी के घर पर मातम छाया था। उनकी मां, पत्नी, बच्चों समेत पूरा परिवार रो रहा था, तो घर के बाहर घटना से आक्रोशित लोगों का गुस्सा नहीं थम रहा था। शनिवार देर रात एक निजी कंपनी में मैनेजर विवेक तिवारी अपनी सहकर्मी को घर छोड़ने जा रहे थे। गोमती नगर के पास गश्त कर रहे पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस वालों के साथ उनकी झड़प हुई और कांस्टेबल प्रशांत चौधरी ने उन्हें गोली मार दी। अस्पताल में विवेक ने दम तोड़ दिया। विवेक की पत्नी कल्पना तिवारी का आरोप है कि उनके पति की हत्या की गई है।
साफ साफ सामने से गोली मारी गई है, उसमें साफ साफ मुझे दिखा। पूरी गाड़ी में मेरे हस्बैंड का खून बिखरा पड़ा हुआ था। क्यों मारा? किस वर्दी के नशे में चूर थे वो? चोर उचक्का को पकड़ना होता है तो हमेशा निशाना चूक जाता है, वो हाथ से निकल जाते हैं, कैसे मार दिया उन्होंने?
दिन में मंत्री आशुतोष टंडन विवेक के परिवार वालों से मिलने गए तो उन्हें भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। विवेक के परिजनों का आरोप था कि उन पर विवेक के दाह संस्कार करने का दबाव बनाया जा रहा है।
सिर्फ हम आप हमें निकले दे दीजिए और मीडिया के सामने कह दीजिए हम तैयार नहीं है, तो हम भी अपनी मांगों के पीछे हटने को तैयार नहीं है।
आशुतोष टंडन से मुलाकात के बाद लखनऊ के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने परिवार के लिए मुआवजे की घोषणा की।
नगर निगम में फाइनली वैकेंसी डिसाइड करते हुए वहाँ पे जो नौकरी है उसकी मांग को प्रशासन के द्वारा स्वीकार किया गया है। मुआवजे की जो मांग थी उसमें 10 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रशासन के द्वारा स्वीकृत किया गया है। जो सीबीआई जांच है उसके बारे में स्पष्ट कहा गया है कि परिवार मांग करता है तो इसकी संस्तुति सीबीआई को भेजी जाएगी। 30 दिन में सारी मांग पूरी कराने का इनका प्रस्ताव था। इसी प्रार्थना पत्र में वो 30 दिन की मांग का भी लिखा गया कि सारी व्यवस्थाएं 30 दिन में कर दी जाएंगी।
लेकिन परिवार वालों का कहना था कि वो तब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब तक मुख्यमंत्री उनके पास नहीं आते हैं।
सारे प्रशासन और मंत्री जी का कहना है मुख्यमंत्री जी ही मुआवजा देंगे, मुख्यमंत्री जी ही नौकरी देंगे, हम कुछ नहीं दे सकते हैं। जब सब मुख्यमंत्री को ही करना है तो मंत्री जी प्रशासन कौन होता है बीच में? मुख्यमंत्री जी स्वयं आए तभी तब तक हम अपने धरने पे बैठे रहेंगे। हमें आश्वासन नहीं चाहिए।
इस घटना ने पूरे लखनऊ को हिला दिया। सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस की कार्यशैली पर तल्ख टिप्पणियों की बौछार होने लगी। लोगों का गुस्सा विवेक के घर पर देखने लायक था। गोरखपुर में मौजूद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने भी इसे हत्या बताया।
वह इनकाउंटर नहीं है, हम इस घटना की पूरी जांच कराएंगे। प्रथम दृष्टया जो दोषी थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका है और जो भी दोषी होगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इस पूरी घटना की जांच होगी, आवश्यकता पड़ेगी तो सीबीआई को भी हम इस मामले को देंगे।
वही राज्य के डीजीपी ओपी सिंह ने घटना को अंजाम देने वाले दोनों सिपाहियों को बर्खास्त करने का फरमान सुनाया।
ये प्योर क्राइम का मामला है जिसमें सेल्फ डिफेंस का अगर वो बहाना लेते हैं तो सेल्फ डिफेंस भी जो है वो पब्लिक परसेप्शन जो थ्रेट का है उससे दूर उससे बढ़ा कर नहीं किया जा सकता है। सो मैं समझता हूँ कि ये प्योर एंड सिंपल क्राइम है जो हमारे दोनों सिपाहियों के द्वारा किया गया है, इसी कारण उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उन दोनों सिपाहियों को बर्खास्त भी कर दिया है, समरली बर्खास्त कर दिया है।
लेकिन इन सब के बावजूद कांस्टेबल प्रशांत चौधरी अपनी पत्नी के साथ मीडिया के सामने पुलिस अफसरों पर उनके साथ भेदभाव करने के आरोप लगा रहे थे।
मैंने अपनी तहरीर दी है, जो मेरे साथ घटना हुई उसकी ना ही कोई FIR कॉपी मुझे मिली है, ना ही मेरी कोई FIR हुई है। बस दबाया जा रहा है और सब ये कह रहे हैं कि तुम्हारा मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, सब अधिकारी जितने भी हैं।
यूपी में सुल्तानपुर के रहने वाले विवेक तिवारी ने मेरठ के कॉलेज से MBA की पढ़ाई की थी और फिलहाल अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ लखनऊ में रह रहे थे। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
उधर राजस्थान के अलवर में कथित गोरक्षकों के हाथों मारे गए पहलू खान के परिजन गवाहों को सुरक्षा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि वो और इस मामले के गवाह सुरक्षित नहीं हैं। सुनिए नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
कोई 1.5 साल पहले हुजूम के हाथों मौत का शिकार हुए पहलू खान के मुकदमे में शनिवार का दिन गवाही के लिए निर्धारित था। पहलू खान के परिजनों के मुताबिक जब वे एक गाड़ी में सवार होकर गवाहों के साथ जा रहे थे, नीमराणा के निकट उन पर फायरिंग की गई। उस वाहन में सवार पहलू खान के दो पुत्रों और गवाहों ने अलवर का रुख किया और पुलिस अधीक्षक राजेंद्र सिंह से मुलाकात की। उनका आरोप था कि यह घटना गवाहों में डर पैदा करने और गवाही देने से रोकने के प्रयास का हिस्सा है। हरियाणा से गवाही देने निकले इन लोगों में से एक ने बताया कि बिना नंबर प्लेट की एक गाड़ी में आए लोगों ने गोली चलाई।
जो बैर रोड से नीमराने के बीच में एकदम काली गाड़ी आई पीछे से और उन्होंने बुरा बोला हमसे, गाड़ी रोको, ये करो वो करो, हमने फिर हम बोले मैंने कि कोई ऐसा आदमी हो जाए तो मिलने वाले, हमने ऐसा ना बोलते और कोई फोन वोन करते। फिर हमने जब मैंने ड्राइवर से बोला मैंने भाई गाड़ी को मत रोकना, गाड़ी को बैर रोड कभी इधर उधर रुकते, एकदम उन्होंने जब फायरिंग करी एकदम हमने बोला मैंने भाई कैसे भी गाड़ी को वापस कर, बिल्कुल डर के हम बोले ड्राइवर से मैंने भाई
पुलिस प्रमुख राजेंद्र सिंह ने BBC को बताया कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है और इसकी सत्यता की पड़ताल की जा रही है। पुलिस प्रमुख ने गवाहों की सुरक्षा का निर्देश दिया है। पुलिस के मुताबिक घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पहलू खान के परिजनों ने मुकदमे की सुनवाई बहरोड से अलवर स्थानांतरित करने की मांग की है। मेव समाज के जमशेद सरपंच ने कहा है कि पुलिस ने सुनवाई नहीं की तो आंदोलन किया जाएगा।
ये सुबह गवाही के लिए आ रहे थे तो कुछ गुंडे बदमाशों ने जो अपराधी हैं उन्होंने इनको घेर के ये जैसा बता रहे हैं इन पर फायरिंग की है। इस तरह की फायरिंग और इस तरह की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जो मुलजिम है वो बाहर घूम रहे हैं, गुंडे बदमाश बाहर घूम रहे हैं, इनकी जान को खतरा है, इसलिए कोर्ट ये वहाँ से कोर्ट में मुकदमा नहीं चलना चाहिए, अलवर आना चाहिए और मुलजिम गिरफ्तार होने चाहिए। मैं गिरफ्तारी की मांग करता हूँ, अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं तो हम जिले में आंदोलन करेंगे। इस तरह बैरोड में इस तरह गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने घटना पर चिंता व्यक्त की है और सरकार को इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना करने को कहा है। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने घटना पर चिंता व्यक्त की है और सरकार को इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना करने को कहा है। हरियाणा के पहलू खान को पिछले साल कथित गोरक्षकों के हुजूम ने पीट पीट कर मार डाला था। उस वक्त पहलू खान एक वाहन में गाय खरीदकर हरियाणा ले जा रहे थे। पुलिस ने हत्या के साथ साथ गोतस्करी का भी मामला दर्ज किया था। पूर्वी राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से घिरे अलवर के उस तरफ हरियाणा है और इधर राज्य के 3 जिले अलवर से सरहद बनाते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि कथित गोरक्षा और गोतस्करी की घटनाएं अलवर जिले में ही क्यों ज्यादा होती है। नारायण बारेठ, BBC जयपुर।
BBC हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
और अब दिलनवाज पाशा बताएंगे आज के अखबारों की सुर्खियां।
वात्सल्य, कल लखनऊ की जो घटना जिसका हमने भी जिक्र किया, एक बेगुनाह नागरिक की पुलिस की गोली से मौत, आज लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पंजाब केसरी लिखता है आम आदमी का एनकाउंटर, और इसी खबर पर मैं इंटरनेट पर लखनऊ से प्रकाशित अमर उजाला का संस्करण देख रहा था, उसमें तस्वीरें प्रकाशित की गई हैं उन अभियुक्त सिपाहियों की जिन पर हत्या के आरोप हैं। उनमें से एक ने थाने पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चलते हुए वो दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो नाटकीय है उसमें पुलिसकर्मी उन्हें गोद में उठाकर अस्पताल ले जाते हुए दिख रहे हैं। और अखबार ने सवाल ये उठाया है कि ये नौटंकी क्यों की गई। और एक और पहलू जो स्थानीय अखबार उठा रहे हैं वो ये है कि पूरे मामले पर लीपापोती करने की कोशिश पुलिस करती रही और ये दर्शाने की कोशिश की जाती रही कि सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई गई है। और ये खबर दिल्ली से प्रकाशित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुषमा स्वराज ने भारत की विदेश मंत्री जो बयान दिया है वो अखबारों के पहले पन्ने पर है। जनसत्ता लिखता है हत्यारे का महिमा मंडन करता है पाकिस्तान। एक दिलचस्प खबर प्रकाशित की है आज के दैनिक भास्कर ने, जिसमें उस बस की तस्वीर है जिसके हरी झंडी दिखाकर जनकपुर से अयोध्या रवाना किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और खबर का शीर्षक है मोदी ने जिस बस को झंडी दिखाई वो दोबारा नहीं चली, यानी ये सिर्फ शुरुआत की गई थी नेपाल के जनकपुर से अयोध्या तक बस सेवा की, लेकिन वो बस दोबारा कभी नहीं चली है। दैनिक भास्कर की ही एक और खबर बता रही है कि देश में नौकरी आय जीवन स्तर पर नहीं पड़ रहा है जीडीपी बढ़ने का असर, यानी जो जीडीपी के बढ़ते आंकड़े तो बताए जा रहे हैं
पिछले तिमाही के आंकड़े जो सामने आए
जी, कहा गया है कि 8.2% जीडीपी बढ़ी है, लेकिन उस अनुपात में नौकरियां नहीं बढ़ी हैं, लोगों की आय नहीं बढ़े हैं और जीवन स्तर में भी कोई खास इजाफा नहीं हुआ है। अमर उजाला ने भारत आए माइक टायसन की तस्वीर प्रकाशित की है जो मुंबई में झुग्गी बस्ती गए थे, और गौर करने वाली बात यह है कि माइक टायसन खुद एक जो है बहुत गरीब इलाके में पैदा हुए थे और सिर्फ
20 साल निकलकर बॉक्सिंग रिंग में बड़ा नाम किया
जी, 20 साल की उम्र में वो हैवीवेट चैंपियन बन गए थे। एक और अनूठा फैसला है जिसमें अदालत ने कहा है तलाक ले लो पर ताउम्र दोस्त बने रहो। एक तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए टिप्पणी की है जिसे अमर उजाला ने शीर्षक बनाया है, और अमर उजाला में ही कोने में प्रकाशित एक खबर है बाल विवाह कानून मुस्लिम जोड़ों पर लागू नहीं, ये फैसला दिया है चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने।
बहुत शुक्रिया दिलनवाज पाशा अखबारों की समीक्षा के लिए, और अब खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त।
बिल्कुल, अभी हम जीते हैं तो मैं तो तैयार ही हूँ, तो अपॉर्चुनिटी जब भी आएगा तो रेडी रहूंगा।
ये राहत भरे शब्द हैं रोहित शर्मा के, जो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने के बाद अब भारत का नियमित कप्तान बनने के लिए भी तैयार हैं। भारत ने चाहे जीत के लिए 223 रनों की तलाश में आखिरी गेंद तक संघर्ष किया, लेकिन खिताबी जीत तो जीत ही है, और उसके बाद सबकी नजरें टिकी थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों के लिए चुने जाने वाली भारतीय टीम पर। आखिरकार बीसीसीआई की चयन समिति ने कल देर शाम टीम का ऐलान कर ही दिया। टीम की कमान विराट कोहली संभालेंगे, इसका सीधा सा मतलब है कि उनकी अंगुली की चोट अब ठीक है। उनके अलावा टीम में इन दिनों सुर्खियों में छाए पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल को भी जगह मिली है। अन्य सदस्यों में केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी, विकेटकीपर ऋषभ पंत, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर शामिल हैं। वेस्ट इंडीज और भारत के बीच पहला टेस्ट मैच 4 से 8 अक्टूबर तक खेला जाएगा। भारतीय टीम में सलामी बल्लेबाज शिखर धवन जगह नहीं बना सके, उनके लिए इंग्लैंड का दौरा बुरे सपने जैसा रहा, लेकिन बीते एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में तो वो जमकर चमके। वैसे भी घरेलू पिचों पर उनका रिकॉर्ड दमदार रहा है। शिखर धवन के अलावा लगातार क्रिकेट खेल रहे जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार को आराम दिया गया है। टेस्ट सीरीज से पहले वेस्टइंडीज और भारतीय बोर्ड अध्यक्ष एकादश के बीच वडोदरा में 2 दिवसीय अभ्यास मैच खेला जा रहा है, जहां कल पहले दिन भारतीय बोर्ड अध्यक्ष एकादश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पारी 6 विकेट पर 360 रन बनाकर समाप्त घोषित की। सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ कल केवल 8 रन बना सके, लेकिन मयंक अग्रवाल ने 90 रन बनाकर अपना दमखम दिखाया। उनके अलावा अंकित बावने ने भी नाबाद 116 रनों की शतके पारी खेलकर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की कड़ी परीक्षा ली। वेस्टइंडीज के लेग ब्रेक गेंदबाज देवेंद्र बिशू ने 104 रन देकर 3 और शेनॉन गैब्रियल ने 41 रन देकर 2 विकेट हासिल किए।
और आपसे विदा लें उसके पहले मुख्य समाचार सुनते हैं दिलनवाज पाशा से।
इंडोनेशियाई अधिकारियों का कहना है कि शुक्रवार को सुलावेसी द्वीप पर आए भूकंप और सुनामी के कारण मरने वालों की तादाद हजारों में हो सकती है। उत्तर कोरिया का कहना है कि प्रतिबंध जारी रहने की वजह से अमेरिका के प्रति उसका भरोसा कम हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला के चेयरमैन इलॉन मस्क अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। वो अमरीकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ विवाद को समाप्त करने के लिए $2 करोड़ का हर्जाना भी चुकाएंगे। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अरदवान ने जर्मनी के शहर कोलोन में यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक का उद्घाटन किया है। ब्राजील में 10,000 महिलाएं राष्ट्रपति पद के दक्षिणपंथी उम्मीदवार जाइर बोलसोनारो के खिलाफ देशभर में चल रहे प्रदर्शनों में शामिल हो गई हैं। अमेरिका में संघीय जांच एजेंसी FBI ने राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से सुप्रीम कोर्ट के लिए नामित जज ब्रेट कैवेना पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच शुरू कर दी है, और नाइजीरिया की सत्ताधारी पार्टी ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस ने राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी को फरवरी 2019 में होने वाले चुनावों के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे देवाशीष कुमार। आपसे अगली मुलाकात दिनभर में शाम के वक्त 7:30 बजे होगी। तब तक खबरों के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।